Om Namah Shivaya. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Kathopanishad, presented by Swami Sri Pranavanandaji Maharaj. Thank you. Om Namah Shivaya.
वो किसी से टकरा जाएगा, वो दीवार से टकरा जाएगा, वो गाड़ी से टकरा जाएगा, वहां खतरा है, क्योंकि आंख नहीं है और आंख वाली की तरह चल रहा है और मालूम हो जाएगी भैया मेरे को आंख नहीं है, तो चलेगा कैसे? चलेगा आंख वाले की तरह चलेगा कि बिना आंख वाले की तरह चलेगा? वो सावधानी से चलेगा, वो टटोल टटोल के चलेगा, बहुत सारे खतरे जो उसके सामने है उससे टलेगा, वो बचेगा। इसलिए बहुत महत्वपूर्ण बात कही सुकरात ने, कहा कि मैं जानता हूं कि मैं अज्ञानी हूं, तुम नहीं जानते हो, तुम अज्ञानी हो, और मैं जानता हूं मैं अज्ञानी हूं, और इसीलिए मैं दुनिया का सबसे बड़ा ज्ञानी हूं। क्योंकि ज्ञानी होने का प्रथम जो कदम है, प्रथम जो सीढ़ी है, वो अज्ञान का ज्ञान होना है। उस समय के लोग वो बात समझ नहीं पाए, भारतीय होते तो समझ लेते, बहुत जल्दी समझ लेते। बहुत सी बातें कही उन्होंने, लोगों ने कहा कि इसको जहर दो, ये तो बहुत विपरीत बातें कर रहा है। अंत में उनको जहर दिया गया, जहर का प्याला जब उसको दिया गया और वो व्यक्ति प्रसन्नता पूर्वक उस जहर को पी रहा है, शिष्य लोग रोने लगे। शिष्यों को उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण बात की, उन्होंने कहा कि मैंने जिया, जी के देखा आत्मा क्या है, अब मैं मर के देखूंगा कि आत्मा क्या है। बोले मैंने जीवन में देखा है, लेकिन मरने के बाद भी वो होगा कि नहीं? मरने के बाद भी वो तत्व, वो आत्म तत्व रहेगा कि नहीं रहेगा? बोले मर के देखूंगा मैं हूं, मैं रहूंगा कि नहीं? बोले मरने के बाद ही मालूम हो सकता है कि वो तत्व मरेगा कि नहीं मरेगा। बोले मर के देखूंगा। और सत्य ही बहुत ही मजेदार आदमी था वो, जहर पिया और वो खोज रहा था, उस समय खोज रहा था कि मैं मर रहा हूं कि नहीं, और उन्होंने घोषणा कर दी। उन्होंने कहा कि पैर मरे लेकिन मैं अभी मरा नहीं। बोले घुटने तक शरीर शिथिल हो गया, मर गए, पैर मर गए, अभी तक मैं मरा नहीं। बोले कान मर गए, आंखें मर गई, सब कुछ मरा, लेकिन मैं अभी अंतिम, उन्होंने कहा कि मैं, वो मरते समय अपने आप को जिंदा करके मर गया। आत्मा की अजरता अमरता को जान के मरा, शरीर मरा, उसको मालूम पड़ा कि आत्मा आजो नित्य शाश्वतो यम पुराणो न हन्यते हन्य माने शरीर। शरीर के मरने पर भी वो आत्म तत्व मरने वाली वस्तु नहीं है, वो शरीर के परे की चीज। महर्षि दंडायन झेलम नदी के किनारे रहा करते थे। विश्व विजेता सुकरात वहां पहुंचे, तक्षशिला, वहां के राजा को पराधीन किया उन्होंने, आम भी राजा थे। और इसी परंपरा का था ये, सिकंदर भी इसी परंपरा का, सुकरात की परंपरा का था। सुकरात का शिष्य शायद अरस्तु हुआ, अरस्तु का प्लेटो और प्लेटो का सुकरात, सिकंदर। जब वहां से जब आने लगे, प्लेटो ने कहा कि भैया तू जा कहां रहा है? बोले विश्व विजय करने के लिए जा रहा हूं। वो भी मजेदार थे, बोले उसके बाद क्या करोगे तुम? विश्व विजय करने के बाद क्या करोगे? उन्होंने कहा आपके पास आके भजन करूंगा। प्लेटो ने कहा कि जगह खाली है, विश्व विजय करने के बाद ही भजन ही करना है, तो बोले अभी भजन क्यों नहीं करता है? बोले अभी से शुरू कर। लेकिन उन्होंने कहा नहीं, मैं विश्व विजय करके भजन करूंगा। बोले हिंदुस्तान आएगा रास्ते में, और वहां जाने के बाद तीन चीजें कहते हैं उन्होंने बताई थी, तीन चीजें सुना था उन्होंने, प्लेटो ने सुना था हिंदुस्तान के बारे में, बहुत सुना था, वो बहुत ज्ञानी पुरुष थे। उन्होंने कहा कि वहां जाने के बाद तीन चीजें कर, वो दयालु होते हैं, महापुरुष बहुत दयालु होते हैं, उनको मालूम था इसका इसी में कल्याण है, लड़ने में कल्याण नहीं है। वो सुदूर भारत तक पहुंचेगा तो बाहर भारत का ज्ञान इसको मिले, वहां का ध्यान मिले, सत्संग मिले, और इसका भी उद्धार हो और हमारे देश का भी उद्धार हो। उन्होंने कहते कि वहां एक ग्रंथ है श्रीमद् भगवत गीता, उसको ले आओ, लेने आना, केवल पुस्तक नहीं लाना है, समझना है। वहां पुस्तक ले आने का ये नहीं कि पुस्तक खरीद करके ले जाना, माने गीता का ज्ञान यहां ले आना है, गीता का ज्ञान समझना है, और दूसरी चीज किसी संत की शरण जाना, और तीसरी चीज कहते गंगा जल है सब। कहां यूनान का व्यक्ति, और वो कितनी अगाध निष्ठा और श्रद्धा रही होगी उसे। यहां आया सबसे पहले उन्होंने यही बोला कि मैं किसी साधु को मिलना चाहता हूं, गुरु की याद आ गई सिकंदर को, मैं किसी गुरु को मिलना चाहता हूं, किसी श्रेष्ठ साधु को मिलना चाहता हूं, मेरे गुरु का आदेश है। आम्भी ने कहा एक गुरु है, बोले चलो हम मिला देंगे। बोले मिलाने के पहले उन्होंने सोचा कि इतना बड़ा सिकंदर विश्व विजेता, चलो बुला लेते हैं राजमहल में। सिकंदर के सैनिकों के साथ कुछ सैनिक गए देश के, अरे वो तो महर्षि दंडायन बड़े सिद्ध पुरुष, और वो झेलम का किनारा, योगियों का किनारा नारायण, बड़े बड़े आश्रम तपस्वी लोग निवास किया करते थे, वो आपका ये झेलम का किनारा को सामान्य था क्या? ये पंजाब जो पाकिस्तान में गया हुआ है बहुत उच्च क्षेत्र था, हमारी जो श्रेष्ठतम जो आध्यात्मिक भूमि थी वही थी, वहीं से पूरा भारत संचलित होता था, बड़े बड़े तीर्थ थे उधर। महर्षि दंडायन छोटी सी कुटिया झेलम का किनारा, बाल ऊपर यूं ऐसे लेते हैं, बड़ा समय मस्ती का रहा होगा, ऐसे ही ठंडी का समय धूप सेक रहे थे। एक दो उनके शिष्यगण, आहा वो तो परम वैराग्यशाली साधु, ब्रह्मनिष्ठ महापुरुष। वहां जाकर के उन्होंने आदेश दिया, बोले सिकंदर विश्व विजेता यहां तक आ चुके हैं, और उन्हें इस राज्य पर आधिपत्य जमा लिया है, संधि हो गई है, और राजमहल में आपके दर्शन करना चाहते, आपको बुला रहे हैं, आपको फरमा रहे हैं। बड़े आदर के साथ बोला, लेकिन वो तो मस्त फकीर, सिकंदर के सैनिकों को आदेश देना आता था, बड़े क्रूरतम थे वो लोगों को मार सकते थे, उठा के ले जा सकते थे, छीन सकते थे, वो विश्व विजयी कोई ऐसे नहीं होती है, बड़े ही क्रूरतम लोग थे वो। लेकिन उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, महर्षि दंडायन ने सुना और अनसुना कर दिया। और जब उन्होंने और आक्रोशित होकर के दोबारा बोला, बोले सुने नहीं मेरी बात, सुकरात का आदेश नहीं सुना। महर्षि दंडायन ने बड़ी मजेदार बात बोली, उन्होंने कहा कौन सुकरात, कौन सा आदेश? अरे बोले वो आदेश जिस आदेश को ये चिड़िया नहीं मानती है। बोले सुकरात का आदेश इन चिड़ियाओं को दे दो, बोलो कि तुमको सुकरात बुला रहा है, तो क्या ये चिड़ियां तुम्हारे सुकरात की बात मानती हैं? आप ये झेलम नदी को आदेश दो, क्या ये झेलम नदी तुम्हारे सुकरात का आदेश मानती है? अरे इन जड़ पेड़ पौधों का आदेश दो, क्या ये पेड़ पौधे तुम्हारे सुकरात का आदेश मानती? बोले नहीं मानती। दो कौड़ी का आदेश जो चिड़िया नहीं मानती, और वो आदेश तुम हमको दे रहे हैं, चकरा गए उनके सैनिक, चकरा गए वो निर्भय, और वो वचन नारायण और सत्य वचन, सैनिकों को आज तक ऐसा आदमी नहीं मिला, उनके सामने कांपने वाले, डिग्री आने वाले, भागने वाले लोग मिले, और वो व्यक्ति कहता आदेश देना हो तो इन चिड़ियों को दे दो, झेलम नदी को दे दो, चकरा गया। ऐसा आदमी, ऐसा निर्भीक आदमी, कोई उत्तर नहीं था उसका, उनके पास बात सत्य थी। आज कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था सैनिकों को, बात तो सत्य है। आज पहली बार मालूम पड़ा सैनिकों को सिकंदर के कि हमारा सिकंदर भी निर्बल है। उनको ऐसा लगता था कि हमारे सिकंदर का आदेश नहीं मानने वाला कौन है दुनिया में, और आज पहली बार मालूम पड़ा चिड़िया के ऊपर भी उसका आदेश नहीं चलता है। लौट गए और जाकर के उन्होंने क्षमा मांगी, हम कुछ नहीं कर सके, उनको नहीं ला पाए। बोले बहुत मजेदार आदमी है, उस पर किसी का वश नहीं है, किसी का भी वश नहीं है। कहते सिकंदर ने पहला वाक्य बोला, बोले हमारे मेरे गुरु भी ऐसे ही हैं। उसको मालूम पड़ा हो न हो, बात तो दम है, इस बात में बहुत दम। पहुंच गया, वहां जाके खड़ा हो गया, प्रणाम किया, और उस समय भी एक बड़ी मजेदार बात बोली महर्षि दंडायन ने। वो संयोग से ऐसा हुआ कि धूप सेक रहे थे, बीच में आके खड़े हो गए सिकंदर, और उनकी छाया पड़ने लगी उनके शरीर के ऊपर। उन्होंने कहा भैया तू दे नहीं सकता है तो छीन क्यों रहा है, तो दुनिया में कुछ दे नहीं सकता है, दुनिया को कुछ दे नहीं सकता है, तो मेरी फुकट की ये सूर्य की किरणें जो भगवान सूर्य मेरे को दे रहा है, मेरे शरीर पर सूर्य की किरणें पड़ रही हैं, और उसको तुम छीन क्यों रहे हो। बोले थोड़ा हटके खड़े हो जाओ। सिकंदर को ऐसा बोलने वाला आदमी आज तक कोई नहीं मिला, पहली बार मिला, पहली बार डांटने वाला आदमी मिला, पहली बार मालूम पड़ा कि मैं गलत हूं, बात तो सही है, खड़े होने का तरीका नहीं, अरे मैं हवा से धूप से एक रहा हूं और बीच में आके तुम खड़े हो गए, तुम्हें खड़े होने का तरीका नहीं है, बात तो सत्य है। कहते झट से सिकंदर दूर खड़ा हो गया, और उसके बाद जो बातें हुई उनकी बहुत अद्भुत बात है। सिकंदर ने पूछा कि मेरा डर आपको नहीं लग रहा है, सारी दुनिया कांपती है, मेरे सैनिकों से, मेरे शस्त्र अस्त्रों से, इन योद्धाओं से, क्या आपको ऐसा नहीं लगा कि मेरे को मार सकते। वो नारायण आत्मज्ञान की घोषणा थी, वो ब्रह्म ज्ञान की घोषणा थी। न हन्यते हन्य माने शरीरे, उन्होंने कहा कि शरीर के मारे जाने पर भी आत्मा मारा नहीं जाता है, मेरे को मालूम है। आप मारोगे इस शरीर को, मारोगे पीटोगे इस शरीर को, पीटोगे खत्म करोगे इस शरीर को, खत्म करोगे, लेकिन मेरे तक तुम्हारी पहुंच नहीं है, मेरे आत्मा तक तुम्हारी पहुंच नहीं है, मेरे आत्मा पर तुम्हारा वश नहीं है। तुम शरीर पर नियंत्रण कर सकते हो, तुम शरीर को गुलाम भी बना सकते हो, लेकिन मेरी आत्मा को गुलाम कौन बनाएगा, मैं आत्मा हूं, वहां तक तुम्हारी पहुंच ही नहीं है, तुम्हारे शास्त्रों की भी पहुंच नहीं है, और तुम कदाचित इस शरीर को मारोगी भी, मैं भी देखूंगा इस शरीर को तुम मार रहे हो, मैं देखूंगा इस शरीर को तुम खत्म कर रहे हो, उसे अलग होके मैं भी देखूंगा। इतना पार्थक्य बोध, नारायण इतना पार्थक्य बोध। पंचदशीकार ने कहा जैसे ये भौतिक पदार्थ वृक्ष आदि आप अपने से अलग समझते हो, वैसे ही अपना शरीर भी अपने से अलग मालूम पड़े। समझना कि वो ज्ञान, वो पूर्णता का ज्ञान, जैसे मालूम पड़ रहा है ये शरीर, ये सारी चीजें मेरे से अलग हैं, वैसे मालूम पड़े ये शरीर भी मेरे से अलग हैं। बात तो सत्य है। राजा जनक का दृष्टांत देता हूं मैं आपको इस चीज को समझने के लिए। राजा जनक ने एक स्वप्न देखा था, बहुत मजेदार स्वप्न। राजा जनक शयन कर रहे हैं, राजा है, और जहां पर सो रहे हैं सोने का पलंग है। सोने का पलंग माने केवल सोने का पलंग नहीं, समझ गए? अरे सब लोग तो सोने के पलंग पर सोते हैं आप यहाँ जितने भी लोग हैं सब सोने की पलंग पर सोते हैं, हा? आपके सारे पलंग सोने के लिए हैं, सोने के पलंग पर सोते, लेकिन उनका पलंग सोने का था और वो भी सोने का था, वो स्वर्ण का था, कोई कमी नहीं थी। और वो सो रहे हैं और सोते समय उन्होंने स्वप्न देखा, बहुत मजेदार स्वप्न। अक्सर भिखारी होता है वो राजा बनने का स्वप्न देखता है, और जो राजा होता है वो भिखारी होने का स्वप्न देखता है, जो हारा हुआ है वो जीतने का स्वप्न देखता है, और जो जीता हुआ है वो हारने का स्वप्न देखता है, क्योंकि उसके मन में डर है कहीं मैं हार न जाऊं। और जो हारा हुआ है वो सोचता है कि मैं जीतूंगा कि नहीं, इसलिए वो जीतने का स्वप्न देखता है। राजा जनक थे और उन्हें स्वप्न देखा मैं भिखारी हो गया, और जब भिखारी हो गया तो भीख मांग रहे हैं, भूखे हैं, प्यासे हैं, दीनहीन है, शरीर के ऊपर वस्त्र भी हैं फटे पुराने हैं, और वो भिक्षा मांग रहे, भीख मांग रहे, लेकिन कोई दे नहीं रहा है, लोग उपेक्षा कर रहे हैं। कितना बड़ा दुख, बहुत मुश्किल से उनको थोड़ा चावल मिला, कहीं से एक पुरानी हंडी मिली, मटका मिला, बहुत खुशी हुई, और वो सोचने लगे कि अब मैं चावल पका के खाऊंगा। आनंद, कितना आनंद है, लकड़ी जला रहे हैं, फूंक मार रहे हैं, आग जला रहे हैं, पानी डाला, वो मटकी रखा, ओहो क्या खुशी, पकेगा खाऊंगा, पकेगा खाऊंगा। और उसी समय दो लड़ते हुए सांड आ गए, और उस दो लड़ते हुए सांडों के बीच में उनकी वो मटकी आ गई और मटकी फूट गई, चावल बिखर गया। राजा जनक बैठ करके रोने लगे, और वो फूट फूट के रोते रोते थोड़ी सी झपकी लग गई जैसे हम लोगों की सत्संग में झपकी लग जाती कभी कभी सुनते सुनते भी झपकी लग जाती है, अरे सुनते सुनते नहीं, कई बार तो बोलते बोलते भी झपकी लग जाती है। अब आपको मालूम नहीं पड़ता है, कभी कभी हम भी सो लेते हैं बोलते बोलते अब आपको मालूम नहीं पड़ता है, सही मालूम नहीं पड़ता है, क्योंकि बोलते रहते हैं, लेकिन एक वाक्य और दूसरे वाक्य के बीच में जो स्पेस है ना, उतने में भी आदमी सो लेता है, सो लेता है एक बार की मैं बहुत पुरानी बात सुना दूं। एक बार मैं ट्राइबल एरिया में थोड़ा भ्रमण में था, वो 40 दिन की जो पदयात्रा मैंने की थी ट्राइबल जोन में, तो इतना मैं थक गया, और वो इतने लोग श्रद्धालु, रात में 2 बजे अंतिम, मेरे को खुशी हुई कि अब तो अंतिम मीटिंग खत्म हो गई, अब मिलना जुलना खत्म, जाके अब आराम करें। उस समय कोई 50 लोग रोड पर ऐसे गांव के लोग आदिवासी अपना चादर ओढ़ के बैठे हुए हैं, जैसे ही हम पहुंचे और सामने आ गए, महाराज हमारे गांव चलो। अरे मैंने कहा भैया जब 2 बजे, महाराज बोले नहीं 500-600 लोग गांव में बैठे हैं मंदिर में, आप आओ 2 मिनट के लिए आओ, बस 2 मिनट के लिए। मैंने कहा जब 2 मिनट चलो कोई बात नहीं, चले गए वहां। और मधु बाबू मैं जा करके देखा सचमुच लोग बैठे हैं ऐसे, मैंने प्रणाम किया उनकी आस्था को, बैठ गया, माइक सामने रखा। अब 2 मिनट का मतलब 2 मिनट थोड़ी होता है, बोले 2 मिनट और प्रवचन करो, आशीर्वाद दो। और मैंने माइक लिया और शुरू किया, उसमें शुरुआत करता हूं तो ओम बोलता हूं, ऐसे ओम बोला और मैं सो गया अब उस पीछे सब श्रोता लोग बोल रहे थे ओम, और फिर ओम बोल के मैं चुप हो गया। अब चुप हो गया तो सो गया। आप सब लोग सोच रहे थे कि महाराज समाधि में चले गए फिर मैं ओह जग गया, अरे मैंने कहा सो गया, फिर मैंने ओम शुरू किया, ओम कितना भी कोशिश करो वो नींद आए। अंत में मैंने सोचा कि अब ओम से काम नहीं चलने वाला है, ओम बोलूंगा फिर सो जाऊंगा मैं। और आप केवल ऐसी अवस्था में नहीं, ऐसे भी प्रवचन करते समय थोड़ा सा सो लेता हूं मैं। और ये जो प्रवचन के समय नींद आना, ये कोई नई बीमारी नहीं, ये बहुत पुरानी बीमारी है। वो अमरनाथ अमर गुफा, और उसमें भी भगवान शंकर मां पार्वती को ज्ञान दे रहे थे, और उस समय भी मैया सो गई थी। मालूम है आप लोगों को? मालूम है ना, मां सो गई थी। इसलिए सत्संग में नींद आना ये बहुत पुरानी बात है, और आपको नींद आए तो आप बुरा मत समझना। और आपको नींद आए तो आप एक झपकी ले लेना, लेकिन बाद में सावधान हो जाना। फिर अब राजा जनक उनकी मटकी गिरी, चावल बिखर गया, और वो खूब रोते रहे स्वप्न में, स्वप्न में, और रोते रोते झपकी लगी, और जैसे इधर झपकी लगी और उसी उनकी नींद टूट गई। जैसे नींद टूटी अब सोचने लगी, स्वप्न तो हम भी देखते हैं और राजा जनक ने भी देखा था, लेकिन दोनों में कितना अंतर। राजा जनक सोचने लगे, मैंने स्वप्न देखा भिखारी बनने का, भीख मांगा, लोग भीख नहीं दे रहे थे, कितना दुख था, कितनी परेशानी थी। अब वो सत्य के सत्य, मैं राजा बना हूं या आज मैं राजा हूं, ये सत्य है कि मैं भिखारी था वो सत्य है। मजेदार बात क्या थी मालूम है? उसमें एक बात थी मजेदार। राजा जनक सोच रहे थे जैसे कि राजा जनक भिखारी बनने का स्वप्न देख सकता है, तो भिखारी राजा जनक देखने का स्वप्न भी तो देख सकता है। वो सोच रहे थे कहीं ऐसा तो नहीं, वो जो सो रहा था भिखारी और उस भिखारी का स्वप्न तो नहीं है ये। राजा जनक सोच रहे थे ये कहीं भिखारी का स्वप्न तो नहीं है, मैं राजा जनक हूं, ये उस भिखारी का स्वप्न तो नहीं है जो स्वप्न के अंदर जो सो रहा था, उधर वो सोया और इधर मैं जगा, कहीं ये स्वप्न तो नहीं है। बात सत्य है, जब एक राजा भिखारी बनने का स्वप्न देख सकता है तो एक भिखारी राजा बनने का स्वप्न देख सकता है, वो सत्य की है सत्य। बोले राजा जनक हूं ये भिखारी का स्वप्न तो नहीं है, उनकी जागृति संदिग्ध हो गई, ऐसा स्वप्न देखा उन्होंने और उनकी जागृति संदिग्ध हो गई। ये बहुत ऊंची बात हो गई। और आपको एक बार मालूम पड़ जाए कि ये शरीर और ये जगना ये सारी चीजें स्वप्न है, आप मुश्किल में होंगे। आपके अंदर वो जो सत्यत्व का आकर्षण है वो वासना को पैदा करता है, और एक बार मालूम पड़ जाए कि ये स्वप्न है, फिर ये सत्यत्व का आकर्षण समाप्त हो जाता है, स्वप्न के प्रति आकर्षण नहीं होता है, क्योंकि स्वप्न को हम सत्य कहां समझते हैं। और एक बार मालूम पड़ जाए ये स्वप्न है, यही तो है, यही तो है, इतना ही जानना और कुछ नहीं है। अब ये सारी चीजें स्वप्न है, तो जन्म भी स्वप्न, मरना भी स्वप्न, जीना भी स्वप्न, ये सारी चीजें ये स्वप्न है। और इस स्वप्न का जो मूल आधार तत्व है, उसके बाद न हन्य ते हन्य माने शरीर, स्वप्न में कोई मरता भी है तो मरता नहीं, और वो पैदा भी होता है तो पैदा नहीं। आप स्वप्न में कुछ भी आपके जीवन में परिवर्तन आए या दुखद या सुखद कुछ होता है क्या? कुछ होता नहीं, होता हुआ मालूम पड़ता है, वो केवल होता हुआ मालूम पड़ता है। इसलिए तत्व दृष्टि से ये सारी चीजें होती हुई मालूम पड़ रही हैं। ये बातें बहुत गहरी हैं। इसलिए तत्व दृष्टि से जब आप जागेंगे और मालूम पड़ेगा कि सारी चीजें स्वप्न है, उस समय आपको मालूम पड़ेगा अजो नित्यः शाश्वतो यम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। आप सो रहे थे, स्वप्न देख रहे थे, कोई मार रहा है, पीट रहा है, आप मर भी गए, आपकी अर्थी भी निकली, ये स्वप्न में देख रहे थे, जलाने के लिए लोग ले भी जा रहे हैं, और उस समय आप अपने अर्थी को देख के आप रो रहे थे, बगल वाले ने जगा दिया, अरे बोले रुटो क्या कर रहे, रो रहे हो, उठ के बैठ गए। उस समय क्या हो रहा था, आप मर भी गए थे, आरती भी निकल रही थी, और उस समय आपको कोई पूछे कि भैया तुम तो मर गए थे, आरती भी निकल रही थी, तो आप क्या बोलोगे? अरे ये तो स्वप्न था, वो तो स्वप्न था, स्वप्न। ऐसे ही नारायण, ये सारी चीजें जो हैं हम अपने आप को समझ रहे हैं, मैं पैदा हुआ हूं, मैं मरने वाला हूं, मैं अमुक हूं, और एक बार समझने के बाद, एक बार जानने के बाद, बोध होने के बाद, फिर आपको कोई बोलेगा कि आप मरने वाले हैं, आप बोलेंगे नहीं भैया, हम तो अजर अमर हैं, न हन्यते हन्यमाने शरीरे। बहुत सुंदर श्लोक है, इस श्लोक को हम यहीं पूरा करते हैं, कल हम लोग सुनेंगे हंता चेन मन्यते हंतुम। बहुत सुंदर सुंदर इस कठोपनिषद के मंत्र हैं, आप सीधे बैठ जाएं। ओम ह्रीम नमः शिवाय, ओम ह्रीम नमः शिवाय, ओम ह्रीम नमः शिवाय, ॐ ह्रीं 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 नमः शिवाय, ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः।